एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं।
हाँ, एक ऐसा विषय जो हजारों सालों के इतिहास, संस्कृति और लगातार चलने वाली बहसों को अपने अंदर समेटे हुए हैं।
हम बात कर रहे हैं यहूदी इतिहास के,
और इस सफर में हमारे साथ हैं डेविड एन मायर्स के विचार। वे एक जाने माने इतिहासकार हैं और उनका काम हमें यहूदी इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करता है।
हम खास तौर पर उनकी किताब ज्यूइश हिस्ट्री, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और उनके दूसरे लेखों, उनके विश्लेषणों पर ध्यान देंगे।
तो सवाल उठता है कि ये विषय आज इतना जरूरी क्यों है?
देखिए, आज के दौर में पहचान, राष्ट्रवाद, इतिहास को कैसे समझें, कैसे बयान करें, ये सब दुनिया भर में बड़ी बहस के मुद्दे हैं।
बिल्कुल।
और मायर्स का नजरिया हमें दिखाता है कि कैसे एक समुदाय इतने लंबे समय तक अपनी पहचान भी बनाए रखता है और लगातार बदलता भी रहता है, पनपता भी रहता है।
सही कहा। ये सिर्फ यहूदियों की कहानी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं किसी भी पुरानी और दुनिया भर में फैली हुई सभ्यता को समझने का एक मॉडल है ये।
हाँ, ये हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो विचारों की, तर्कों की और बदलते हालातों के साथ, मतलब ढलते जाने की एक जिंदा कहानी है।
और मायर्स इसी चीज पर रोशनी डालते हैं।
तो थोड़ा इनके बारे में जान लें। ये डेविड एन मायर्स हैं कौन?
हाँ बिल्कुल, वे आधुनिक यहूदी इतिहास और विचारों के बहुत बहुत ही सम्मानित विद्वान हैं।
UCLA यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, वहाँ प्रोफेसर हैं और वहाँ यहूदी अध्ययन केंद्र के निदेशक भी रह चुके हैं।
उनकी जो खासियत है वो सिर्फ ये नहीं कि उन्हें तारीखें और घटनाएं पता है,
नहीं,
जिसे कहते हैं इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी, उस पर बहुत जोर देते हैं।
अच्छा, मतलब इतिहास कैसे लिखा गया इस पर?
हाँ बिल्कुल, ये समझना कि इतिहास को लिखा कैसे गया, किस नजरिए से देखा गया और क्यों लिखा गया, ये एक तरह का मेटा नजरिया है इतिहास लिखने के, इतिहास को समझना।
ये दिलचस्प है। तो वो सिर्फ क्या हुआ ये नहीं बताते?
नहीं, बल्कि उसे कैसे याद रखा गया या कैसे बताया गया, इस पर भी सवाल उठाते हैं। ये चीज उनके काम को अलग बनाती है।
और उनकी पकड़ आधुनिक यहूदी विचारों पर बहुत गहरी है, खासकर ज़ायोनीवाद, फिर वो प्रवासी जीवन में जो राष्ट्रवाद पनपा, जिसे डायस्पोरा नेशनलिज्म कहते हैं।
हाँ,
और जो धार्मिक परंपराएं हैं उनके बीच की खींचतान, ये सब वो बखूबी समझते हैं।
इसी समझ से वो उन बुनियादी तनावों को पहचानते हैं जिन्हें वो यहूदी अनुभव का, कह सकते हैं, दिल मानते हैं।
उनका नजरिया हमें जो बनी बनाई कहानियां होती है ना,
हाँ,
उनसे आगे ले जाता है एक ज्यादा गहरी, ज्यादा आलोचनात्मक समझ की तरफ।
और सबसे अच्छी बात यह है कि वो मुश्किल अकेडमिक विचारों को भी बहुत दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं, आम पाठक भी जुड़ पाता है।
तो अब आते हैं उनके काम के निचोड़ पर। मायर्स कहना क्या चाहते हैं?
देखिए, उनका मकसद यहूदी इतिहास को सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट की तरह दिखाना बिल्कुल नहीं है।
नहीं,
वे हमें एक ढांचा देते हैं, एक सोचने का तरीका, आप कह सकती हैं एक टूल किट, जिससे हम इस विशाल और कभी कभी तो बहुत विरोधाभासी लगने वाले इतिहास को समझ सके।
उनका जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि यहूदी इतिहास कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। न तो आप इसे सिर्फ ईश्वर की कोई योजना कह सकते हैं, ना ही ये सिर्फ जुल्म और आंसू की दास्तान है।
तो फिर क्या है?
मायर्स कहते हैं कि ये कभी ना खत्म होने वाले तर्कों, आर्ग्यूमेंट्स विदाउट एंड, और रचनात्मक अनुकूलन, क्रिएटिव अडेप्टेशन की एक गतिशील कहानी है।
अच्छा, मतलब लगातार बहस करते रहना और बदलते रहना ही इसकी जान है।
बिल्कुल, यही इसकी डायनेमिक्स है।
मायर्स उन दो बहुत मशहूर नजरियों को भी चुनौती देते हैं जो अक्सर मतलब हावी रहते हैं।
कौन से दो नजरिए?
पहला है लैक्रिमोज कंसेप्शन, ये मानना कि यहूदी इतिहास बस दुख, दर्द, उत्पीड़न की एक लंबी अटूट कहानी है,
आंसुओं की कहानी।
हाँ, ये सुना है। मायर्स मानते हैं कि ये सच का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी तस्वीर नहीं। इसमें रचनात्मकता, जिंदा दिली भी उतनी ही अहम रही है।
और दूसरा नजरिया?
दूसरा वो ज़ायोनी नजरिया, जो सारे इतिहास को सिर्फ इसराइल राष्ट्र की स्थापना की तरफ ले जाने वाली एक जरूरी, अनिवार्य प्रक्रिया की तरह देखता है,
और जो दुनिया भर में फैले यहूदी जीवन को, यानी डायस्पोरा को, कमतर आंकता है।
हाँ, मायर्स कहते हैं कि असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। उनके मुताबिक यहूदी सभ्यता को कुछ गहरे अनसुलझे तनावों ने शक्ल दी है।
कैसे तनाव? किस तरह के विरोधाभास?
मायाज मुख्य तौर पर कुछ बुनियादी विरोधाभासों की बात करते हैं, जैसे अपनी जमीन यानी होमलैंड और परदेश यानी डायस्पोरा के बीच का तनाव,
ठीक है,
और दुनियादारी यानी सेक्युलर के बीच,
और
अपनी अलग पहचान बनाए रखने यानी पर्टिकुलरिज्म और दुनिया से जुड़ने यानी यूनिवर्सलिज्म के बीच का तनाव।
अच्छा,
और मायर्स मानते हैं कि ये तनाव कोई कमजोरी नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
उनके अनुसार ये तनाव ही यहूदी रचनात्मकता, उनके लचीलेपन, उनकी निरंतरता के असली इंजन है।
तो ये जो पीढ़ियों से चली आ रही बहसें हैं, ये जो तनाव हैं, इन्हीं से यहूदी पहचान लगातार बनती और बदलती रही है।
हाँ बिल्कुल, चलिए इन तनावों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। पहला लेते हैं समय और स्मृति, टाइम एंड मेमोरी।
ठीक है,
मायर्स बताते हैं कि यहूदी परंपरा में समय को दो तरह से महसूस किया गया है। एक तो है रेखीय समय, मतलब घटनाओं का सीधा क्रम, जैसा हम इतिहास के बारे में अक्सर सोचते हैं,
एक के बाद एक घटना।
हाँ, और दूसरा है चक्रीय समय, जो धार्मिक रिवाजों से जुड़ा है, जैसे हर हफ्ते शब्बत मनाना या सालाना त्योहार मनाना।
अच्छा, जो अतीत की घटनाओं को हर साल या हर हफ्ते दोबारा जिंदा करते हैं।
बिल्कुल, और लंबे समय तक ये चक्रीय धार्मिक समय ही ज्यादा हावी था।
लेकिन फिर आधुनिकता आई और उसने इस सोच को बदला।
हाँ, इतिहास को एक विज्ञान की तरह देखा जाने लगा, अतीत को बांटा जाने लगा, ये स्वर्ण योग, ये अंधकार योग वगैरह वगैरह। हाँ,
और यहीं से इतिहास लिखना, मतलब अपनी कहानी कहना, पहचान बनाने और उस पर बहस करने का एक बहुत अहम जरिया बन गया।
बिल्कुल, समुदाय कैसे अपने अतीत को याद रखता है, कौन सी कहानियां चुनता है, किसे भूल जाता है, ये बहुत मायने रखता है।
हाँ, जैसे होलोकॉस्ट की याद, ये आज यहूदी पहचान के लिए बहुत केंद्रीय है, पर उसे कैसे याद किया जाए, उसके क्या मायने निकाले जाए, इस पर भी तो लगातार बहसें चलती रहती हैं।
सही कहा।
अब आते हैं दूसरे बड़े तनाव पर, स्थान, वतन और प्रवासी जीवन,
स्पेस, होमलैंड एंड डायस्पोरा।
हाँ, ये शायद सबसे जानी पहचानी कश्मकश है। एक तरफ इसराइल की धरती, एरेत्स इसराइल के लिए वो गहरी चाहत, और दूसरी तरफ हजारों साल दुनिया भर में फैले रहने की हकीकत, जिसे डायस्पोरा कहते हैं।
यहाँ मायर्स एक बहुत बहुत अहम बात कहते हैं। वो उस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि डायस्पोरा सिर्फ एक सजा थी या सिर्फ मजबूरी थी।
वो मानते हैं कि ये यहूदी अस्तित्व का एक बुनियादी और बेहद रचनात्मक दौर भी था।
बिल्कुल, डायस्पोरा में भी जिंदगी खूब फली फूली।
हाँ, उदाहरण के तौर पर बेबीलोनिया में निर्वासन के बाद यहूदी समुदाय ने सिर्फ खुद को फिर से संगठित नहीं किया, बल्कि वहीं पर बेबीलोनियन तलमूद जैसा महान ग्रंथ रचा गया, जो आज भी यहूदी कानून और सोच का, मतलब एक तरह से आधार है।
या फिर मध्ययुगीन स्पेन का उदाहरण लें, कॉर्डोबा और दूसरी जगह।
हाँ, जहाँ यहूदी दर्शन, कविता, विज्ञान, इन सब का अद्भुत विकास हुआ। तो मायर्स हमें दिखाते हैं कि डायस्पोरा सिर्फ दुख की कहानी नहीं थी, बल्कि वो रचनात्मकता का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था।
ये बात तो है, और आधुनिक ज़ायोनीवाद ने बेशक लोगों को उनकी प्राचीन भूमि से दोबारा जोड़ने का एक शक्तिशाली प्रयास किया।
हाँ, लेकिन मायर्स याद दिलाते हैं कि ये अकेला रास्ता नहीं था, और नहीं सबने इसे माना।
जैसे
साइमन डुबनो जैसे विचारक थे, वो मानते थे कि यहूदियों की असली प्रतिभा डायस्पोरा में ही निखरती है, जहाँ वे अलग अलग संस्कृतियों के बीच रहते हुए अपनी पहचान बनाए रखते हैं और सांस्कृतिक स्वायत्तता हासिल करते हैं।
अच्छा, तो ये बहस जमीन बनाम डायस्पोरा, ये आज भी किसी ना किसी रूप में जारी है।
बिल्कुल जारी है।
चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं, शक्ति और स्वायत्तता, पावर एंड एजेंसी।
हाँ, ये भी बहुत अहम है। हजारों साल तक डायस्पोरा में यहूदी अल्पसंख्यक की तरह रहे, अक्सर बिना किसी राजनीतिक ताकत के, शासकों की मर्जी पर निर्भर।
लेकिन मायर्स जोर देते हैं कि इसे सिर्फ बेबसी की कहानी नहीं समझना चाहिए।
क्यों? इसका दूसरा पहलू क्या है?
दूसरा पहलू है स्वायत्तता, एजेंसी। यहूदी समुदायों की केहिला चलाने की, यानी अपनी अंदरूनी हुकूमत चलाने की, एक लंबी और मजबूत परंपरा थी।
अच्छा, मतलब अपने समुदाय के अंदर उनके अपने नियम कानून थे?
हाँ, उनके पास अपने सदस्यों पर कानूनी और सामाजिक अधिकार होते थे। वे बड़े बड़े साम्राज्यों के अंदर रहते हुए भी अपने लिए स्वायत्तता की जगह बनाना जानते थे।
तो वो सिर्फ शिकार नहीं थे, जैसा अक्सर दिखाया जाता है, वो अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले कर्ता यानी एजेंट्स भी थे।
बिल्कुल, लेकिन आधुनिक युग में चीजें बदली।
कैसे?
कई जगह नागरिक अधिकार पाने के लिए उन्हें अपनी ये सामुदायिक स्वायत्तता छोड़नी पड़ी। बराबरी के बदले स्वायत्तता का सौदा हुआ एक तरह से।
और फिर ज़ायोनीवाद आया।
हाँ, और ज़ायोनीवाद ने इस चलन को बिल्कुल पलट दिया। उसने राजनीतिक संप्रभुता और अपनी सेना बनाने पर जोर दिया, शक्ति हासिल करने पर।
और ये जो बदलाव है, मतलब एक राजनीतिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक होने से लेकर एक ताकतवर सेना वाले संप्रभु राष्ट्र बनने तक का सफर, ये अपने साथ नई नैतिक और राजनीतिक चुनौतियां लेकर आया है।
जाहिर सी बात है, ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है, और यहूदी इतिहास अब इस नई हकीकत से जूझ रहा है। ये किसी भी समूह के लिए सत्ता के साथ आने वाले सवालों का एक गहरा अध्ययन बन जाता है।
अब बात करते हैं चौथे अहम तनाव की, आस्था और आधुनिकता, फेथ एंड मॉडर्निटी,
यानी धर्म और दुनियादारी के बीच की खींचतान।
हाँ, पुराने जमाने में यहूदी जीवन पूरी तरह से धर्म और ईश्वर के इर्द गिर्द घूमता था। धार्मिक कानून यानी हलाखा केंद्रीय था।
लेकिन फिर ज्ञानोदय आया, जिसे यहूदी संदर्भ में हस्कला कहते हैं, और आधुनिक सोच ने इस पूरी व्यवस्था को चुनौती दी।
बिल्कुल, आधुनिक समाज का हिस्सा बनने की कीमत अक्सर ये चुकानी पड़ी कि धर्म को निजी मामला बना दिया जाए, उसे सार्वजनिक जीवन से हटा दिया जाए।
और इस बदलाव पर बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुईं।
हाँ, जैसे सुधार आंदोलन, रिफॉर्म मूवमेंट, उसने यहूदी धर्म को आधुनिक जमाने के मूल्यों के हिसाब से ढालने की कोशिश की।
तो दूसरी तरफ रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स, वो और मजबूती से परंपरा से चिपक गए, बचाव की मुद्रा में आ गए।
और बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने धर्म की जगह नई विचारधाराओं में जीवन का अर्थ ढूंढा, जैसे समाजवाद या राष्ट्रवाद।
और इससे एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष यहूदी संस्कृति भी उभरी, जैसे यिडिश भाषा और उसका साहित्य।
हाँ बिल्कुल, और विचारक भी हुए। स्पिनोजा जैसे दार्शनिकों ने तो बौद्धिक सीमाओं को बहुत आगे बढ़ाया, परंपरा पर सवाल उठाए।
तो वहीं मोसेस मेंडेलसोन जैसे विचारकों ने परंपरा और आधुनिकता में एक तरह का पुल बनाने की कोशिश की, संतुलन साधने की।
ये बहसें ईश्वर की भूमिका क्या है, धार्मिक कानूनों की आज क्या प्रासंगिकता है, ये सब आज भी यहूदी समाज में बहुत जिंदा हैं।
और अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे पेचीदा विषय पर, जो इन सभी बहसों को कहीं ना कहीं अपने में समेट लेता है, वो है पहचान। कौन है यहूदी?
आइडेंटिटी, हु इज अ जू?
हाँ, ये सवाल तो हमेशा से ही बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन आधुनिकता ने इसे और भी उलझा दिया है। पारंपरिक तौर पर तो पहचान माँ के वंश से और धार्मिक कानूनों को मानने से तय होती थी, है ना?
हाँ, मोटे तौर पर। लेकिन जब धर्म का असर कम हुआ और राष्ट्र की भावना बढ़ी, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो पहचान के नए आधार सामने आए।
जैसे?
जैसे सवाल उठा कि क्या यहूदी होना एक धर्म है, या एक नस्ल, एक एथनिसिटी है, या एक कौम, एक नेशनैलिटी है, या फिर सिर्फ एक साझा संस्कृति और इतिहास है।
और मायर्स दिखाते हैं कि इन सभी के पक्ष में दलीलें दी गईं और आज भी दी जाती हैं।
बिल्कुल, जैसे ज़ायोनी आंदोलन ने यहूदियों को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना था कि यहूदी एक राष्ट्र हैं जिन्हें अपनी जमीन चाहिए।
वहीं पूर्वी यूरोप के बुंडिस्त जैसे समाजवादी समूह थे।
हाँ, वो उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक समूह मानते थे, जिनकी अपनी यिडिश भाषा और संस्कृति थी, और जो उन्हीं देशों में अपने अधिकार चाहते थे जहाँ वो रह रहे थे। उन्हें अलग देश नहीं चाहिए था।
तो देखिए कितने अलग अलग नजरिए थे।
और आज ये बहस और भी पेचीदा हो गई है। धर्म बदलने के नियम क्या हों? आजकल जो अंतरधार्मिक विवाह हो रहे हैं, उनसे पैदा हुए बच्चों की पहचान क्या मानी जाए?
और इसराइल में रहने वाले यहूदियों और डायस्पोरा में रहने वाले यहूदियों के बीच कैसे रिश्ते हों, उनकी पहचान कितनी अलग है, कितनी एक जैसी?
ये सब दिखाता है कि यहूदी होने की परिभाषा खुद एक लगातार चलने वाली बहस का नतीजा है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है जो लगातार बदल रही है।
तो अगर हम डेविड मायर्स के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो कुछ मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे अहम बात तो यही है कि इतिहास एक अंतहीन बहस है। यहूदी इतिहास कोई तयशुदा सीधी कहानी नहीं है, बल्कि ये पहचान, जमीन, ईश्वर, शक्ति जैसे बुनियादी सवालों पर एक लगातार चलने वाली, जिंदा और शायद कभी न सुलझने वाली बहस है।
और यही बहस इसकी जान है। असहमति कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है।
बिल्कुल। दूसरी बात, डायस्पोरा की अहमियत और उसकी रचनात्मकता। दुनिया भर में फैला होना सिर्फ एक मजबूरी या त्रासदी नहीं थी।
हाँ, ये यहूदी अस्तित्व का एक मौलिक और बेहद उपजाऊ पहलू रहा है। इसने अद्भुत सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास को जन्म दिया। यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी प्रवासी समुदाय के योगदान को सिर्फ निर्वासन या मजबूरी के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, उनके अपने योगदान होते हैं।
सही कहा। तीसरा, ताकत की पहेली। यहूदी इतिहास न तो सिर्फ लाचारी की कहानी है, न ही सिर्फ ताकतवर होने की।
इसमें राजनीतिक कमजोरी के लंबे दौर भी हैं और साथ ही अंदरूनी स्वायत्तता और सत्ता के साथ मोलभाव करने का हुनर भी शामिल रहा है।
और आधुनिक दौर में जो राजनीतिक सत्ता मिली है वो अपने नए नैतिक सवाल खड़े करती है। सत्ता कभी आसान नहीं होती।
चौथी बात, आधुनिकता ने सब कुछ बदल दिया। इसने पुराने ढांचों को, पुरानी सहमतियों को हिला के रख दिया।
और यहूदी पहचान को फिर से परिभाषित करने के लिए ज़ायोनीवाद, सुधारवाद, रूढ़िवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसी कई नई विचारधाराओं को, कई नए रास्तों को जन्म दिया।
ये दिखाता है कि बाहरी बदलाव कैसे अंदरूनी सोच और दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं, इनोवेशन को प्रेरित कर सकते हैं।
और पांचवा, पहचान कभी एक जैसी नहीं रही और ना ही है। यहूदी होने का मतलब हमेशा बदलता रहा है। ये धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता, जातीयता और हाँ, व्यक्तिगत पसंद का एक मिला जुला जटिल रूप है।
ये हमें सिखाता है कि किसी भी समूह की पहचान को सरल खांचों में, सिंपल लेबल्स में नहीं बांटा जा सकता। वो हमेशा ज्यादा जटिल होती है।
बिल्कुल।
मायर्स के काम से कुछ ऐसे विचार भी निकलते हैं जो सचमुच सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर हम उनके मुख्य तर्कों का सार निकालें तो कुछ इस तरह कह सकते हैं। पहला,
हाँ,
यहूदी इतिहास को एक सीधी कहानी की तरह नहीं बल्कि एक अंतहीन बहस की तरह समझना चाहिए। बुनियादी सवालों पर एक जिंदा, कभी न सुलझने वाली बहस। ये सिखाता है कि शायद असहमत होना, सवाल पूछते रहना, यही किसी सभ्यता को जिंदा रखता है।
बिल्कुल। और दूसरा सार ये हो सकता है, डायास्पोरा सिर्फ निर्वासन या दुख की कहानी नहीं थी, ये यहूदी अस्तित्व का एक बुनियादी और गहरा रचनात्मक तरीका था जिसने यहूदी धर्म की कुछ सबसे अहम सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों को जन्म दिया।
ये हमें याद दिलाता है कि जड़ों से दूर रहकर भी गहरी रचनात्मकता संभव है। प्रवासी अनुभव अक्सर नए विचारों का स्रोत बनता है।
और तीसरा सार, आधुनिकता ने यहूदी सवाल का कोई एक जवाब नहीं दिया बल्कि पुरानी सहमतियों को तोड़कर कई प्रतिस्पर्धी रास्ते खोल दिए। ज़ायोनीवाद, घुल मिल जाना, समाजवाद, धर्म के नए रूप, सब भविष्य की दिशा तय करने की होड़ में थे।
ये दिखाता है कि बड़े बदलावों के दौर में अक्सर एक रास्ता नहीं होता, कई संभावित भविष्य होते हैं और उनके बीच चुनाव करना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है।
हाँ, और ये बातें सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं हैं, इनका आज की दुनिया में, हमारी जिंदगी में भी मतलब है।
कैसे? क्या व्यवहारिक अनुप्रयोग हो सकते हैं?
पहला तो यही कि जटिल पहचानों को समझना। मायर्स का तरीका हमें किसी भी पुरानी, बिखरी हुई और विविध पहचान वाले समूह को समझने में मदद करता है, चाहे वो कोई धार्मिक समूह हो, राष्ट्रीय हो या कोई और।
हाँ, ये हमें सिखाता है कि लोगों या समूहों पर लगे लेबल अक्सर अधूरे होते हैं। हमें उनकी अंदरूनी बहसों, उनके तनावों को देखना चाहिए, विविधता को समझना चाहिए।
दूसरा, आसान कहानियों से सावधान रहना। मायर्स हमें सिखाते हैं कि इतिहास की जो बनी बनाई कहानियां होती हैं, खासकर वो जो सिर्फ राष्ट्रीय गौरव या सिर्फ उत्पीड़न पर जोर देती हैं, वे अक्सर गुमराह कर सकती हैं।
हमें हमेशा ये पूछना चाहिए, ये कहानी कौन सुना रहा है और क्यों सुना रहा है। हर इतिहास के पीछे कोई न कोई राजनीति होती है, कोई न कोई एजेंडा होता है। आलोचनात्मक नज़र जरूरी है।
तीसरा, बेहतर संवाद की गुंजाइश। अगर कोई आज के यहूदी मामलों या मान लीजिए इसराइल फिलिस्तीन जैसे पेचीदा मुद्दों को समझना चाहता है तो ये ऐतिहासिक समझ बहुत जरूरी है।
हाँ, ज़ायोनीवाद और डायस्पोरा के नज़रियों की गहरी जड़ों को जानना सतही बातों से आगे बढ़कर ज्यादा गहरी और शायद ज्यादा समझदारी भरी बातचीत में मदद कर सकता है। कम से कम संदर्भ तो पता चलता है।
वो चौथा, बदलाव से सीखना। यहूदी इतिहास जैसा मायर्स दिखाते हैं, बदलते हालात में ढलने की, अनुकूलन की एक जबरदस्त मिसाल है।
ये दिखाता है कि कोई समुदाय सदियों की उथल पुथल से कैसे बच सकता है और पनप भी सकता है। कैसे? जड़ होकर नहीं बल्कि लगातार बदलते हुए।
हाँ, अपनी परंपराओं की नई व्याख्या करते हुए, अपने भविष्य की नई कल्पना करते हुए। ये किसी भी संगठन या संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा सबक है
कि बदलाव को अपनाना ही शायद लंबे समय तक टिके रहने का राज हो सकता है। स्थिरता बदलाव में है, जड़ता में नहीं।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि यहूदी सभ्यता की जान, उसका एसेंस, उसकी बहस करने और खुद को बार बार नए सिरे से गढ़ने की क्षमता में है। ये इतिहास किसी म्यूजियम में रखी हुई चीज जैसा नहीं है, बल्कि विचारों की एक चलती फिरती जिंदा प्रयोगशाला जैसा है।
मेरे लिए ये समझना बहुत अहम था कि जिन चीजों को अक्सर समस्या माना जाता है, जैसे वो जमीन और परदेश का तनाव या परंपरा और आधुनिकता की खींचतान, वही असल में इस सभ्यता की ताकत भी रही हैं। इन्हीं तनावों ने इसे लगातार रचनात्मक और जिंदा रखा है।
हाँ, ये सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए कुछ बुनियादी सवाल उठाती है। हम कौन हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं और हम बदलाव से कैसे निपटते हैं।
डेविड मायर्स का काम हमें दिखाता है कि किसी एक समुदाय के इतिहास को गहराई से समझने से हमें पहचान, याददाश्त, अनुकूलन और दुनिया में अपनी जगह बनाने के बारे में कितना कुछ सीखने को मिल सकता है।
ये हमें अपने इतिहास पर, अपनी पहचान पर भी सोचने को मजबूर करता है।
हाँ, और ये सोचने पर भी कि कैसे दूसरे समुदाय भी, हमारे अपने समुदाय भी इसी तरह के तनावों, बहसों और बदलावों से गुजरते हुए अपनी पहचान गढ़ते रहते हैं। हर इतिहास में ऐसे ही सबक छिपे होते हैं अगर हम देखना चाहें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।